ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। बैठक के बाद दोनों पक्षों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर तंजानिया की राष्ट्रपति भारत के चार दिन के राजकीय दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची। राष्ट्रपति हसन का आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में पारंपरिक स्वागत किया गया। तंजानिया की राष्ट्रपति ने भारत के साथ दशकों पुराने बेहतरीन संबंधों की सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि इस यात्रा से राजनीतिक और आर्थिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे। निर्वाचन आयोग इस समय नई दिल्ली में 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर रहा है। चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही इन सभी राज्यों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 12 अक्टूबर तक इटली और फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री राजनाथ सिंह का रोम में इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रिसेटो से मिलने का कार्यक्रम है। इस वर्ष मार्च में इटली की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था। यात्रा के दूसरे चरण में श्री सिंह पेरिस में अपने समकक्ष सेबेस्टियन लेकोर्नू के साथ 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता करेंगे। भारत और फ्रांस ने हाल ही में रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत की संवेदनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे इस आतंकी घटना से स्तब्ध हैं और संकट की इस घड़ी में हम इसराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। विश्वभर के नेताओं ने भी आतंकी गुट हमास के हमलों की निंदा की है। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए चेतावनी दी है कि इसराइल के किसी भी दुश्मन को इस स्थिति का लाभ उठाने नहीं दिया जाएगा। इस बीच इसराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में मृतकों की संख्या 1000 से अधिक हो गई है। लगभग 700 लोग इसराइल में मारे गए हैं जबकि 400 गाजा में मारे गए हैं। इस संघर्ष में हजारों लोगों के घायल होने की आशंका है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने अभी तक गाजा में 800 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गाजा में कम से कम 70,000 फिलिस्तीनियों ने स्कूलों में शरण ली है। इस बीच इजरायल ने इस संघर्ष के लिए फिलिस्तीन के इस्लामिक समूह हमास को जिम्मेदार ठहराते हुए आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने का संकल्प लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि G20 ने दिखाया कि भारतीय कूटनीति वास्तविकता में अंतर ला सकती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने भारतीय विदेश सेवा दिवस के अवसर पर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे भारत अधिक जटिल और अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ रहा है, उनकी जिम्मेदारी भी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। मृतकों में सेना के 10 जवान भी शामिल हैं। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 105 अभी भी लापता हैं। अभी तक 2,563 लोगों को बचाया गया है। आपदा के कारण 1,381 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ के कारण 14 पुल बह गए। सिक्किम में सेना की त्रिशक्ति कोर के जवान लापता सैनिकों की तलाश कर रहे हैं। त्रिशक्ति कोर उत्तरी सिक्किम के लाचेन, लाचुंग, थांगू और चुंगथांग इलाकों में फंसे हुए 1,700 पर्यटकों को भी सहायता उपलब्ध करा रही है। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली विमानन कंपनी के हवाई किराया बढ़ाने के कारण कल से हवाई सेवाएं महंगी हो जाएंगी। एक तरफ का हवाई किराया 2100 रूपये तथा दोनों तरफ का किराया 4200 रूपये प्रति व्यक्ति होगा। पहले एक तरफ का किराया 1820 रूपये और दोनों तरफ का किराया 3640 रूपये प्रति व्यक्ति था। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता में आज न्यूजीलैंड का सामना नीदरलैंड से होगा। यह मैच दिन में 2 बजे से हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।